تفسیر، یہ پچھلے سبق سے متعلق ایک سوال سامنے آیا ہے کہ آیت نمبر 33 میں رواقدہ علی ظہرہ سے کیا مراد ہے؟ تو رواقدہ جو ہے آپ نے پڑھا ہی کہ را کاف دال جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، اور یہاں پہ رواقد آیا ہے جو را کے دم کی جمع ہے، اور رکدہ کا معنی ہوتا ہے جیسے ٹھہر جانا، رکد المیزان بھی آتا ہے، ترازو کا برابر ہو کر ٹھہر جانا، جیسے رکد الشمس، سورج کا سر پر آ کر ٹھہرتا ہوا معلوم ہونا، تو کسی حرکت کی بھی چیز کا اپنے سہارے پر جو ہے وہ قائم ہو کر پھر ٹھہر جانا. اب جیسے کشتی جو ہے، کشتیاں چل رہی ہیں، کہاں چل رہی ہیں کشتیاں؟ سمندر میں. آیت 32 میں آپ نے پڑھا، 32 میں فی البحر کالاعلام، تو سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں جیسے کہ پہاڑوں کی طرح، دور سے ایسی معلوم ہوتی ہیں نا. تو اب یہاں پہ ہے کہ اگر اللہ ہواؤں کو روک دے، فیضللنا، تو وہ ہو جائیں، ان کی حالت ہی تبدیل ہو جائے کہ جاریہ کشتیاں، چلتی ہوئی کشتیاں، رواقدہ ٹھہر جائیں، ساکت ہو جائیں. علی ظہرہ، تو ہی کی ضمیر جو ہے سمندر کے لیے آئی ہے کہ اس کی پیٹھ پر جو ہے وہ رک جائیں، ٹھہر جائیں. آگے ہم چلتے ہیں، آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ سورۃ شورا آیت نمبر 36 بڑا ہی خوبصورت جو ہے یہ آغاز ہے، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا بات بتاتے ہیں. آپ نے پہلے سبق میں یہ بات پڑھی، جو پیچھے آپ نے 257 سبق پڑھا، اس میں آپ نے یہ بات پڑھی کہ جو دنیا کی طلب رکھتا ہے تو دنیا میں تو سب تمنا پوری نہیں ہوتی، آخرت بھی ان کو نہیں ملے گی، اور ضروری نہیں دنیا بھی ان کو ملے، اتنی ملے جتنی وہ چاہیں گے، اور اگر مل بھی جائے جتنی بھی تو ساری دنیا میں ختم ہو جائے گی، اور جو آخرت کی طلب رکھے گا تو اللہ اس کو زیادہ دیں گے. ایک تو یہ کہ ایک عمل کا اجر کئی گنا زیادہ، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا، ہے نا. تو یہ بات آپ پڑھ ہی چکی. اب یہاں پہ پھر وہی بات ہے، انداز اور ہے، اور بڑا خوبصورت ہے. کیا فرمایا؟ فما اوتیتم من شیئن، پس جو کچھ تمہیں دیا گیا، کچھ بھی، کہ چیزوں میں سے جو کچھ تمہیں دیا گیا، کسی کو پوری دنیا مل جائے، سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں، اور خزانے ان کے پاس ہوں مدفون، اور بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، بہت زیور، بہت سی چیزیں، جتنا کچھ بھی ملا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس جو کچھ تمہیں دیا گیا، منشین کچھ بھی، جو بھی، فمتاع الحیات الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے. اصل میں متاع کے معنی ہوتے ہیں تھوڑی دیر فائدہ اٹھانا، کچھ دیر فائدہ اٹھانا. تو پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ بس وہ مال ہے، بس وہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی کا. تم سن چکے، تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے چند روزہ زندگی کے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں. وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے زیادہ بہتر ہے. وابقا، اور سدا باقی رہنے والا ہے. ابقا یہاں پہ افلو کے وزن پر ہے، اور زیادہ باقی رہنے والا سے مراد کیا ہے؟ زیادہ پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، کوالٹی کے لحاظ سے، اور کوالٹی کے ساتھ ساتھ کوانٹیٹی کے لحاظ سے، چیزوں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو اللہ کے پاس رہنے والا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. زیادہ بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ للذین آمنوا، جو اس کی قیمت ادا کریں گے، جو آخرت کی پلاننگ کریں گے، جو آخرت کو چاہیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو چھوڑ کر ایمان کو اختیار کیا، جو ایمان لے آئے. تو یہ آیت جو ہے وہ کیا بات بتا رہی ہے؟ کہ دنیا کے طالب بن کر مت جیو، دنیا کی نعمتیں ناقص ہیں، फानी है, इसके मुकाबले में आखिरत के उम्मीदवार बनकर जो है वो जिंदगी गुजारो, और आखिरत की नेमतें कामिल भी हैं और हमेशा रहने वाली हैं। लेकिन आखिरत मिलती किन लोगों को है? आखिरत जो है जिन लोगों को मिलेगी उसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम शर्त जो है वो ईमान लाना है, और इसके बगैर ये नेमतें जो हैं किसी को नहीं मिलेंगी। और ईमान के साथ साथ दूसरी अहम चीज जो है वो अमले स्वाले है। पीछे आपने जिक्र पढ़ा ईमान और अमले स्वाले, अब यहाँ पे अमले स्वाले की तफसील बताई जा रही है कि वो कौन से अमले स्वाले है जो वो इख्तियार करते हैं। ईमान के बाद अमले स्वाले क्या हैं? वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि वो लोग अपने रब पर भरोसा करते हैं। मक्की दौर है, जारी हालात बड़े ही मायूस कुन हैं, तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि ये मायूसी जो है इसमें से भी निकलने की अल्लाह कोई राह जरूर पैदा कर देगा। और दूसरी बात क्या है कि जाहिरी साजो सामान जो है उस पर नहीं भरोसा करते मोमिन, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह की जात पर। अगर किसी के पास दुनिया का माल थोड़ा भी है, कम है, तो फिक्र ना करें, अल्लाह पर भरोसा करें, तो अल्लाह जो है वो हालात को बदल देगा। तो वो लोग क्या करते हैं? अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल जो है इसके क्या मानी है? तवक्कुल के मानी हमें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलते हैं वो ये हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की खुश नसीबी ये है कि जो कुछ अल्लाह ताला इसके लिए फैसला करे इससे राजी हो, इस पर कनात करे, और आदमी की बदबख्ती ये है कि अल्लाह ताला से खैर और भलाई की दुआ ना करे, और आदमी की बदनसीबी ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म और फैसले पर नाराज हो। और तवक्कुल के क्या मानी है? एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी ऊंटनी को बांधू और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करूं या उसे छोड़ दूं और तवक्कुल करूं? قال رجل يا رسول الله عاقلها وتوكل او اطلقها وتوكل قال اقلها وتوكل। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एकिलहा, पहले तुम इस ऊंटनी को बांधो, वह तवक्कल, फिर तवक्कुल करो। मानी क्या है कि किसी चीज को हासिल करने की जो तदबीर हो सकती है पहले वो पूरी करो, फिर अल्लाह ताला से दुआ करो कि मैंने तो मुमकिन ना जो भी मुमकिन हो सकता था तदबीर इख्तियार कर ली, अब तू मेरी मदद फरमा। तो ये है तवक्कुल, तवक्कुल। इसी तरह हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ने रवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का दिल हर वादी में भटकता रहता है, तो जो शख्स अपने दिल को वादियों में भटकने के लिए छोड़ देगा तो अल्लाह ताला को परवानी होगी कि कौन सी वादी उसको तबाह करती है। लेकिन जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करेगा, अल्लाह ताला इसको इन वादियों और रास्तों में भटकने और तबाह होने से बचा लेगा। वमन तवक्कल अल्लाह कफाहु शुअब, मानी ये हैं कि अल्लाह को अपना वकील बनाओ, और अगर अल्लाह को जो वकील नहीं बनाता तो फिर वो परेशान रहता है, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात जज्बात उसके दिल में जो है बसेरा करते हैं, अल्लाह ताला फिर उसके दिल को जिधर को चाहे मोड़ दे, और अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल कर ले तो अल्लाह उसको यकसुई दे देता है। तो तवक्कुल की क्या तारीफ सामने आई? एक तो ये के क्या करना है, एकिलहा व तवक्कल, और दूसरा क्या है कि तवक्कुल के असल मानी ये हैं कि तवक्कुल जो है वो नफे को खींच कर लाता है और क्या करता है, नुकसान को दूर करता है ना, तो नफे को खींच कर लाता है और नुकसान को दूर करता है। तवक्कुल के ये मानी है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम इसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर, पूरी कोशिश करनी है, पूरी तदबीर करनी है, फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह पर तवक्कुल करना है। तो यहां पर क्या बताया गया कि वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, हर काम में हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अच्छा, दूसरी सिफ्त जो है वो क्या बताई गई, वल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इज्मी वल फवाहिशा। तो दूसरी सिफत ये बताई गई कि वो परहेज करते हैं बड़े बड़े गुनाहों से। तो यहां पर जो सिफत बताई गई है वो ये है कि यजतनिबूना और जीम नून बा, और जीम नून बा जो है इसके मानी क्या होते हैं, पहलू है ना, करवट। तो वो पहलू ले लेते हैं, पहलू तय ही करते हैं, वो अपने आप को बचाते हैं। पहलू बदल लिया जाए तो मानी क्या होते हैं कि आपने परहेज किया। तो यहाँ पे अल्फाज की ज्यादती मानी की ज्यादती पर दलालत करती है। तो वो परहेज करते हैं कबायरल इस्मी, और क्या है कि बड़े बड़े गुनाहों से। और कबायर जो है ये कबीरा की जमा है, और इस्म जो है किसे कहते हैं, गुनाह को कहते हैं। और आसिमा ऐसी ऊंटनी को कहते हैं जो तेज चल सकती हो फिर जानबूझकर जो है वो तेज ना चले। तो अब ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बड़े बड़े गुनाह या कबीरा गुनाह जो हैं, ये कौन से गुनाह हैं जिनसे परहेज करने के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो बड़े बड़े गुनाहों से जो है वो परहेज करते हैं। सूरत निसा आयत नंबर 31 में भी आप पढ़ चुकी, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहून अनहु मुकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम इन बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और इज्जत और बुजुर्गी की जगह दाखिल करेंगे। अब कबीरा गुनाह की तारीफ क्या है, किसे कहते हैं कबीरा गुनाह? नंबर एक, वो गुनाह जिन पर हद मुकर्रर है। नंबर दो, वो गुनाह जिन पर कुरान या हदीस में सख्त वईद या लानत की गई है। और बाज ये कहते हैं कि हर वो काम जिसे अल्लाह ने या इसके रसूल ने बतौर तहरीम के रोका है कि ये हराम है और उसे रोका है। और हकीकत ये है कि इनमें से कोई एक बात भी किसी गुनाह में पाई जाए तो वो कबीरा है। आप देखें ना, विरासत की सही तकसीम ना करना, अल्लाह उसको जहन्नुम में दाखिल कर देंगे। तो आप सोचे कितनी सख्त सजा बताई अल्लाह ने। फिर आप देखें कि लानत अल्लाह ताला करता है। फिर आप देखें कि आपने सूद के बारे में जब पढ़ा था तो अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है उसके खिलाफ। तो ये भी कबीरा गुनाहों में से है। तो अहदीस में मुख्तलिफ कबीरा गुनाहों का जिक्र मिलता है। बाज उलमा ने किताबें जमा की हैं इस पर, और अल कबायर लिज़हबी ये भी एक जो है ये किताब है इमाम ज़हबी ने लिखी है जिसमें कबीरा गुनाहों को जमा किया है। तो कबीरा गुनाह जो हैं इसमें शिर्क भी आता है, वालदैन की नाफरमानी, झूठ, झूठ भी आता है। इसी तरह सूरत नजम में भी इसके बारे में आता है, और वहां पे अल्लाह ताला यही बात कहते हैं कि कबायर जो है ना इनसे लोगों को बचना चाहिए। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि वो कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं। तो फिर कबीरा गुनाहों में क्या चीजें आ जाएंगी, तमाम बड़े बड़े गुनाह, ठीक है, तमाम बड़े बड़े गुनाह। और आप उस किताबों में ढूंढ सकती हैं कि तमाम बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग उनसे जो हैं वो बचते हैं। फिर आप देखिए कि इसके बाद वल फवाहिशा, अब इसका जिक्र जो है वो अलग से आया है। और ये जो है ये तीसरी सिफ्त है ईमान लाने वालों की, कि ईमान लाने के बाद वो फवाहिश से परहेज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कबीरा गुनाहों के अंदर तो फोहश खुद ब खुद आ जाते हैं, फिर फवाहिश का जिक्र अल्लाह ताला ने अलग से क्यों किया है? इसकी असल बात क्या है? एक बात आप याद रखिएगा कि फवाहिश जो हैं वो अल्लाह को इतने नापसंद हैं और इतने वो बुरे आमाल हैं कि अल्लाह ताला ने शिद्दत की वजह से उनका जिक्र किया है, क्योंकि फवाहिश जो हैं पूरी इंसानी सोसाइटी को तबाहो बर्बाद करके रख देते हैं। इसलिए कबीरा से हटकर कबीरा के अंदर वो आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फवाहिश का जिक्र जो है वो अलग किया। और ये बात भी याद रखिएगा कि फवाहिश जो है ना, फवाहिश जो है इसके अंदर दो बातें खास तौर पर पाई जाती हैं। ये वो गुनाह होते हैं जो शहवत और ख्वाहिश नफ्स की राह से आते हैं। फोहश कौन से गुनाह हैं? जो शहवात और ख्वाहिशात नफ्स की राह से उभरते हैं। और इसमें आप देख लीजिए के फवाहिश के अंदर उल्मा क्या बताते हैं, आप पहले भी कई दफा जो है ये पढ़ चुकी हैं कि फवाहिश में कौन कौन से गुनाह जो है वो आते हैं। और इसमें जो है मसलन आप कह सकती हैं, और कुरान और हदीस से भी हमें दलील मिलती है कि इसमें जिना आता है, अमले कौमे लूत आता है, फिर फवाहिश जो है इसमें और क्या आता है कि किसी को गाली देना, ये भी जो है ये फवाहिश में जो है वो शामिल किया जाता है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो फवाहिश के अंदर जैसे नजर, ये जो लज्जे बसर ना करना, ये जो बेहयाई के काम है, तो ये शहवत के रास्ते आते हैं ना कि दिल चाहा, ख्वाहिश हुई और फिर जो है इंसान जो है वो शहवत में जो है वो मुब्तिला हो गया। तो ये जो जिनसी छेड़छाड़ है इस ये भी जो है ये कबीरा गुनाह में आती है। मसलन जो है वो औरतों की औरतों से हमबिस्तरी है, या मर्दों की मर्दों से है, या जानवरों से बदफेली है, इसको भी कुरान ने फाहिशतिन मुबैना कहा। और वो बातें भी इसमें आती हैं जो जिना के करीब लेके जाती हैं, जिसमें बदनजरी है, गैर महरम की तरफ देखना है, औरतों का अपनी जीनत और जो उसके हुसन की जगह है औरतों के जिस्म पर, उनको खुले बंदों उसकी नुमाइश करना, फिर ये मखलूत महफिलें जो हैं, फिर इसी तरह एक मर्द और औरत की अकेले में जो खलवत होती है, गैर मर्द और गैर औरत की खलवत, ये सारी कबीरा गुनाहों में आती हैं। फिर फोहश किस्म की खबरें फैलाना, सूरत नूर में आप पढ़ चुकी हैं, ये भी इसी तरह थिएटर है, सिनेमा है, होटल, रेडियो पर ऐसे गाने कि जिससे इंसान के जो जिंसी जज्बात हैं उनमें हिजान पैदा हो, एक तूफान उठ खड़ा हो। तो शहवत अंगेज गाने हो या प्रोग्राम हो या नावल, ड्रामे, अफसाने हो या अखबारात में इश्तहारात हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, मॉडलिंग हो रही है, औरत की उड़िया तस्वीरें हैं, ये सारी इसमें आती हैं कबीरा गुनाह में। तो कहा कि वो कबीरा गुनाहों से परहेज करते हैं। अब हमें ये देखना है कि अहले मक्का से कहा जा रहा है, और खास तौर पर जो है मुफस्सरीन ये कहते हैं कि यहाँ पे मुहाजिर और अंसार की तारीफ की गई है कि अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले सहाबा का तर्ज अमल ऐसा था कि वो दुनिया के लिए नहीं आखरत के लिए जीने वाले थे, और वो लोग ऐसा ईमान लाने वाले थे कि फिर अल्लाह ही पर उन्होंने तवक्कुल किया। मक्का के हालात देख लें, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत देख लें, रसूल अल्लाह का साथ देख लें, है ना। फिर वो कबीरा गुनाह, मक्का में ईमान लाने से पहले सहाबा का हाल क्या था कि बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तिला थे, ईमान लाए तो सबको छोड़ दिया, जैसे कोई गर्द झाड़ नहीं देता अपने ऊपर से, फिर अपने गुनाहों को और अमलों को उन्होंने गर्द समझ कर झाड़ा और उसकी तरफ पलट कर भी ना देखा, और इसी तरह बेहयाई के कामों को उन्होंने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिर उनकी चौथी सिफत क्या थी, वाइजा मा गदेबू, और जब वो गुस्से में, हुम यग़फिरून, तो माफ कर देते हैं। अब आप गौर करें इन अल्फाज पर, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उनको गुस्सा ही नहीं कभी आता। बाद लोगों की तारीफ करते हैं, कहते हैं उनको कभी गुस्सा नहीं आता, नहीं कहा, उनको गुस्सा आता है, वाइजा मा गदेबू, जब वो होते हैं गजब में, गुस्से में, हम यग़फिरून, और वो माफ कर देते हैं। और मैं घर बैठी भी जब इस पे पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी ये बड़ी मुश्किल बात है ना, सबर करना मुश्किल है, शुक्र करना मुश्किल है, तो गुस्सा आए और फिर गुस्से पे कंट्रोल करना, ये बड़ा मुश्किल अमल है, क्योंकि गुस्सा जो है ना इंसान की अकल को अंधा कर देता है। गुस्सा जो है ना गुस्से का जज्बा अकल पर गालिब आता है, और बाज़ औक़ात इंसान ऐसी गलतियां कर बैठता है सारी जिंदगी उसको नदामत होती है। अक्सर तलाक गुस्से में तो दी जाती है, अक्सर इंसान जब गुस्से की हालत में होता है तो बीवी को माँ कह देता है कि तू मेरे लिए ऐसी है जैसे कि मेरी माँ की पीठ, बच्चे को आग कर देता है, कत्ल कर देता है, घर से निकाल देता है, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करता है, और गुस्से की हालत होती है बरसों से नेकियां की बड़ी मुश्किल से, जैसे जो जो है वो चिड़िया एक एक तिनका करके घोंसला जमा करे और फिर गुस्से में आके उसको गिरा दे, तो मुश्किल से वो नेकियां करता है, सारी नेकियों को जाया कर देता है, गुस्से में आता है, किया छट्टा सारा खराब कर देता है। तो अब वो कौन से लोग हैं जो कि जब उनको गुस्सा आता है तो वो गुस्से पे कंट्रोल करते हैं और लोगों की गलतियों को माफ कर देते हैं? आप भी वो बनना चाहती हैं? इंशाल्लाह। क्या बात है कि आवाज ही नहीं आ रही, जोर से बोलें। इंशाल्लाह हम सब वो लोग हैं जो कि मोमिनाना और साफ अपने अंदर जो है वो पैदा करना चाहते हैं, और हुस्ने अखलाक का आला नमूना है कि गुस्से को कंट्रोल करना। दो चीजें जो इंसान पर गालिब आती हैं तो इंसान की अकल का दिवालिया हो जाता है, अकल पर वो गालिब आ जाती हैं चीजें, एक है मोहब्बत और एक है गुस्सा। अच्छा भला इंसान होता है, किसी को किसी से इश्क हो जाए, माँ बाप समझा रहे हैं, उस्ताद समझा रहा है, दोस्त समझा रहे हैं, बहन भाई समझा रहे हैं, सब समझा समझा के थक गए, लेकिन ये के इश्क ने उसको दिवालिया उसका कर दिया है ना। और इसी तरह जो है वो गुस्सा, गुस्सा जो है वो अकल को अंधा कर देता है, इंसान अपनी सलाहियतों को खो बैठता है, समझ नहीं आती इंसान क्या कर रहा है, तो क्या करना चाहिए कि इंसान जो है फिर क्या करे कि गुस्सा तो करे, लेकिन तब उसको गुस्सा करना है जब दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो, जब अल्लाह की आयात जो हैं उनकी तस्दीक की जा रही हो, जब खिलाफ शरा काम हो रहा हो, तब गुस्सा करना चाहिए। यानी गैरत होनी चाहिए लेकिन अल्लाह के लिए, दीन के लिए। जैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह के अंदर ये गैरत बड़ी थी, लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह जो पहाड़ की तरह थे, जब उनको उनके सामने कुरान की आयत सुनाई जाती तो ऐसे बैठ जाते जैसे झाग बैठ जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का ऐसा किरदार हमें मिलता है। और इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका क्या किरदार था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया, कभी इंतकाम नहीं लिया, लेकिन जो है जब आपके सामने किसी अल्लाह की काबिल एहतराम बातों की तौहीन की गई तो आपने अल्लाह के लिए इसे बदला लिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह फरमाती हैं, अल्लाह की कसम आपने अपनी जात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लिया जब वो आपके सामने लाया गया, अलबत्ता अगर किसी ने अल्लाह की काबिल एहतराम बातों की तौहीन की तो आपने अल्लाह के लिए इसे बदला लिया। ये बुखारी की रवायत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आया तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाता, जैसे किसी ने चेहरे पर अनार निचोड़ दिया हो। मसलन फातिमा मखजूमी कुरैशी औरत की चोरी का मुकदमा पेश हुआ तो कुरैशियों ने हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु को सिफारिश के लिए भेजा। हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु ने सिफारिश की तो आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और फरमाया, उसामा तुम अल्लाह की हुदूद में सिफारिश करते हो? ये भी बुखारी की रवायत है। इसी तरह एक दफा हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु ने इशा की नमाज में सूरत बकरा शुरू कर दी, एक देहाती ने नमाज तोड़कर अपनी अलग नमाज पढ़ ली। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची तो आप हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु पर सख्त नाराज हुए और 3 बार कहा, अफत्तान अंत या मुआज, अफत्तान अंत या मुआज, 3 दफा कहा, ए मुआज क्या तुम लोगों को फितने में डालना चाहते हो? ये बुखारी की रवायत है। क्यों? कि दिन भर के मेहनत मशक्कत करके लोग आए, जॉब करके थके हुए, अब इमाम जो है उसने सूरत अल बकरा पढ़नी शुरू कर दी, तो आप सोचें कि वो देहाती ने अलग खड़े होकर नमाज पढ़ी, नमाज तोड़ी और अलग पढ़ी, और आपको जो पता चला तो क्या पता चला? इससे क्या बात पता चलती है कि दीन को हिकमत के साथ पेश करना चाहिए, और दाई जो है वो बड़ा जो है वो मौका शनास होता है और रियायत करता है। अच्छा, अब बात यह है कि गुस्सा तो आ सकता है, तो क्या करना चाहिए कि गुस्से का इलाज करना चाहिए। और गुस्से का इलाज क्या है? गुस्से का इलाज क्या है? पहली बात यह है कि जब गुस्सा आए, फस्तईज बिल्लाही मिनश्शैतानिर्रजीम, तब तावुज़ पढ़ ले हम। और इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा गुस्सा शैतान की तरफ से है, और इसमें शक नहीं कि शैतान आग से पैदा किया गया है और आग को पानी ही बुझाता है। लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आ जाए तो वुजू कर ले। और इसके अलावा हमें क्या बात पता चलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो उस वक्त खड़ा हो तो चाहिए कि बैठ जाए, और अगर बैठने से गुस्सा चला जाए तो खैर, वरना लेट जाए, यानी पोजीशन चेंज करनी चाहिए, है ना। तो गुस्से पे कंट्रोल करना है, फौरन गुस्से पे कंट्रोल करना है। फिर इसी तरह तीसरी बात हमें क्या पता चलती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बड़ी खूबसूरत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने गुस्से को रोक लेता है, अल्लाह कयामत के दिन इसे अपने अजाब को रोक लेगा। इसी तरह एक और मौके पर आपने फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए गुस्से का घूंट पी जाने से बढ़कर अल्लाह ताला के नजदीक किसी घूंट का पीना अफजल नहीं है, है ना। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, पहलवान वो नहीं है जो किसी को कुश्ती में पिछाड़ दे, बल्कि वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप को जब्त में रखे। एक शख्स ने रसूल अल्लाह से आकर पूछा, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, गुस्सा मत कर। इसने फिर पूछा कि मुझे कोई नसीहत करें। आपने दोबारा यही कहा। इसने तीसरी बार पूछा, आपने यही कहा। बार बार यही बात कहते रहे कि गुस्सा मत कर। ये बुखारी की रवायत है, और बाज लोगों का ख्याल है कि वो शख्स गुस्से का तेज था। तो इससे क्या बात पता चलती है कि गुस्सा जो है ना, ये हमारी नेकियों को जाया कर देता है और ये हमें बर्बाद कर देता है। तो हम क्या करें कि हम जो है अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। तो ये मोमिनाना औसाफ में से चौथा वस्फ है, वाइजा मा गदेबू हुम यग़फिरून, और जब गुस्से में हो तो माफ कर देते हैं। और आम हालात में माफ करना और गुस्से में माफ करना, ये बहुत अहम खूबी है, बहुत अहम वस्फ है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता करे। वल्लज़ी नस्तजाबू, और वो लोग जो कबूल करते हैं, और आपको पता है ना, अजाबा जॉब से है जवाब देना, कि वो लोग जवाब देते हैं, बात कबूल कर लेते हैं। कैसे जवाब देते हैं? इस तजाबू, तो लबैक कहते हैं। कैसे लबैक कहते हैं? वो अल्लाह की अतात करते हैं, अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद वो क्या, क्यों और कैसे और बड़ा मुश्किल है, वो ऐसे नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, वो अल्लाह की पुकार पर लबैक कहते हैं, अमन्ना, ईमान ले आते हैं, समेना व अताना की तस्वीर बन जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो, जिनका जो है ये वाली बात, उनका हर वक्त का जो है वो अमल होती है, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, कि जो कुछ हमारे रब ने कह दिया तो वो जो है उस पर अमल करने वाले होते हैं। तो वो जवाब देते हैं ले रब्बिहिम, अपने रब के लिए। तो इसके मानिए हैं कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कुरान में और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो बात सामने आई है, तो वो लोग जो हैं वो आगे बढ़कर उस पर जो है वो अमल करने वाले बनते हैं। अहले मक्का क्या कर रहे थे? झुटला रहे थे, है ना। आप आयत 26 से ही पढ़ चुकी, वयस्तजीबु अल्लज़ीन आमनु व अमिलु स्वालिहाति व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही। तो अब ये है कि जो है एक आवाज देने वाले ने आवाज दी कि ईमान लाओ, फौरन ये ईमान ले आते हैं। उसने कहा अतात करो, ये अतात करने वाले बन जाते हैं। उसने कहा सारे गुनाह छोड़ दो, ये गुनाह छोड़ने वाले बन जाते हैं। उनकी जिंदगी में क्या, क्यों और कैसे नहीं होता, एक ही बात है कि अमल की तस्वीर बन जाए। ये कह के कासा साज ने प्याला पटक दिया, अब और कुछ बनाएंगे इसको बिगाड़ के। और फिर उसका पता कैसे चलता है, वाका मुसलाता, और वो नमाज कायम करते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है वो अल्लाह की पुकार का जवाब देने की मिसाल दी जा रही है कि वो नमाज पढ़ने वाले होते हैं। क्योंकि नमाज सबसे अहम फर्ज है और ईमान लाते ही फौरन नमाज की पुकार होती है और दिन में 5 दफा। तो जिसने नमाज को अदा किया उसने गोया के तमाम दीन की हिफाजत की, क्योंकि नमाज जो है बेहयाई के कामों से रोकती है, फोहश कामों से जो है वो रोकती है। तो ये लोग जो हैं ये नमाज जो है कायम करने वाले हैं। इन सलात तन्हा अनिल फाहशा वल मुनकर। और आप देख लीजिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो घर बनाया गया था तो अहले मक्का उसके वारिस होने के मुद्दई थे, लेकिन क्या करते थे वहां पे शिर्क करते थे। तो यहाँ पे अहले ईमान का अव्वलीन मजर नमाज बताई जा रही है कि उनका दावा महज दावा नहीं होता, वो अमली तस्वीर बन जाते हैं। नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। फिर इसके बाद उनकी जो है वो अगली सिफ्त है और ये उनकी 6ठी सिफ्त है, वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम। और वो क्या करते हैं कि अपने काम बहम मशवरे से करते हैं, वह अम्रुहुम और उनके आपस के काम। और आपस के काम से मुराद क्या है, अमर जो है यानी जो भी उनके अहम मामलात हैं, वैसे तो अमर जो है काम को कहते हैं लेकिन अरबी जबान में बड़े वसी मानों में इस्तेमाल होता है। और अमर से मुराद कौन से काम है जो अहम काम होते हैं, कैसे करते हैं, शूरा। और शूरा का जो लफ्ज है ये मस्दर है, इसी तरह जैसे उकबा बुशरा हुस्ना ये बाबे मुफालिया से आया है और ये मस्दर है कि उनके काम जो हैं वो आपस के मशवरे से तय होते हैं। तो गोया के अल्लाह ताला ने जिन मामलात में वाजे कोई हुक्म नाजिल नहीं किया कुरान में तो ऐसे काम वो बहमी मशवरे से करते हैं। जैसे सूरत आल इमरान में आप पढ़ ही चुकी, वशाविर हूं फिल अम्र, गज़वाए ओहद पर जब तबसरा हुआ, हालांकि गज़वाए ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकलकर जो मुकाबला किया तो चंद नौजवान और जोशीले सहाबा के मशवरे से था, और आपने बाहर निकलकर जब मुकाबला किया और नुकसान भी हुआ, आप बहुत गमजदा भी थे, आप खुद भी जख्मी हुए, कितने मुसलमान शहीद हुए और कितने जख्मी हुए, बहुत नुकसान हुआ मुसलमानों को, फिर भी आपको ऑर्डर में हुक्म दिया गया कि क्या कीजिए, वशाविरहुम फिल अम्र, कि अपने मामलात में इनसे मशवरा करता रहे। तो अमीर का काम, नाजमा का काम, इंचार्ज का काम, हाकिम का काम, उस्ताद का काम क्या है कि जो उसके साथी हैं उनसे जो है वो मशवरा करता रहे। क्यों, और मशवरा किनसे करना है, उनके कामों में, यानी वो अपने मामलात मशवरे से तय करते हैं। एक होता है रास्ते में जाता जाता कोई चलता हुआ क्लास के बारे में कोई मशवरा दे के चला जाए, ये तो क्या है, नेकी का हुक्म दिया बदी से मना कर दिया, है ना, उसने एक अच्छा काम किया आपने उनसे मशवरा ले लिया। लेकिन जिनके मामलात होते हैं उनसे मशवरा करना, क्लास है तो क्लास के बारे में, घर के अंदर हैं तो फैमिली के लोग, जैसे शौहर की क्या जिम्मेदारी है कि बीवी से और बच्चों से मशवरा करे। और बाज लोग क्या समझते हैं, बीवी जो है वो पांव की जूती है और जरूरत ही नहीं है इसे मशवरा करना, और बाज लोग औलाद को मशवरे के काबिल नहीं समझते। तो छोटे बातें हों बड़ी बातें हों, घर के मुतल्लिक जो भी मामलात हों तो वो आपस में मशवरे से तय करने चाहिए। और यहाँ जो है ये बात भी हमारे सामने आती है कि ये इस्लाम का सियासी निजाम जो है ना वो बताया जा रहा है। सियासी क्या है, असल में सियासत का लफ्ज सूझबूझ से निकला है, मानी ये है कि जो मोमिन हैं वो क्या करते हैं कि जिस मामले का ताल्लुक दो या दो से ज्यादा लोगों से होता है तो उसमें वो किसी एक शख्स की राय से फैसला नहीं करते बल्कि क्या करते हैं कि वो लोगों से मशवरा लेते हैं। इसीलिए आप लोगों को भी शरीके मशवरा किया जाता है, यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है कि आप अपने मशवरे लिखकर इसके अंदर डालें, और कभी कभी पूरी क्लास में सबके साथ मशवरा किया जाता है। अच्छा ये बात भी याद रखें कि मशवरा हर एक से नहीं हो सकता, बेशक एक शख्स का मामला जो है यानी एक एक काम है और वो बहुत से लोगों से मुतल्लिक है तो सबसे नहीं मशवरा किया जा सकता। तो मशवरा फिर कैसे करेंगे, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا اس کے لیے میری امت کے عبادت گزاروں کو جمع کر لو اور آپس میں مشورہ کر کے طے کر لو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو. تو فقہا اور عابدین کا لفظ آیا ہے، پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ مشورہ ان لوگوں سے کرنا چاہیے جو دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوں اور عبادت گزار ہوں. بعض لوگ بڑے بڑے بولے ہوتے ہیں، بہت بولنے والے ہوتے ہیں، کرنے کرانے والے کچھ نہیں ہوتے، اور ان سے نہ پوچھے، لڑتے جھگڑتے ہی بہت ہیں کہ ہم سے مشورہ کیوں نہیں لیا. لیکن یہ کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا بات پتا چلی کہ مشورہ ان سے لینا چاہیے جو فقہا ہیں. فقہا کون ہوتے ہیں؟ فقہ کا مطلب ہوتا ہے سوجھ بوجھ ہونا، جن کے پاس دین کی سوجھ بوجھ ہو. اور دوسری بات کیا پتا چلی؟ عابد، عبادت کرنے والے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کام کا ارادہ کیا اور اس میں مشورہ لے کر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ارشد امور کی طرف ہدایت فرمائے گا، رشد، اچھے کام کی طرف، یعنی اس کا رخ اسی طرف پھیر دے گا جو اس کے لیے انجام کار خیر اور بہتر ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک موقع پر فرمایا، کہتے ہیں کہ آپ نے آیت یہ پڑھ کر یہ کہا کہ جو قوم مشورے سے کام کرتی ہے تو ضرور ان کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کر دی جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے انسانوں سے مشورہ کرنا اور ایک ہوتا ہے اللہ سے مشورہ کرنا. اور اللہ سے مشورہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ استخارہ کرنا. اور انسانوں سے مشورہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مشاورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی سعادت ہے، اور قضائے الہی پہ راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کی سعادت ہے. اور اولاد آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ نہ کرے اور اللہ کی رضا پر نہ خوش ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، اور کفایت سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم کاموں میں، اہم امور میں اللہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے، اسی طرح ہر کام میں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیا کرتے. فرماتے، جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو دو رکعت نفل پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اور استخارے کی دعا آپ میں سے کس کس کو آتی ہے؟ یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ یاد کر لیں جس کو نہیں آتی. دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألوک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر و تعلم ولا عالم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معیشتی و عاقبت امری فقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فی و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معیشتی و عاقبت امری فصرف انی و صرفنی عنہ و در لی الخیر حیث کان ثم اردنی بھی. اچھا، تو یہ ہے استخارے کی دعا، اللہ سے مشورہ طلب کرنا. اور یہ غلط بات ہے کہ لوگ جو ہے قرآن سے فال نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے مشورہ کیا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. بعض لوگ غلط طریقے سے جو ہے وہ ایک عورت کے بارے میں یا کسی مرد کے بارے میں سنا کہ وہ جو ہے $50 لے کر جو ہے وہ استخارہ کرتی ہے. بحرین میں بھی سنا، پھر برطانیہ میں بھی سنا کہ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ آپ بھی استخارہ کر دیں گی. تو استخارہ خود کرنا چاہیے، جن لوگوں کا معاملہ ان کو خود استخارہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح مشورہ جو ہے آپ کو کرنا چاہیے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، قریبی لوگوں سے. اور ایک بات اور، مشورے کا تو آپ کو پتا چل گیا کہ مشورہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی طرف بات لوٹا کر رائے معلوم کرنا، ایک بات کو کسی کی طرف پھیر کر رائے معلوم کرنا. پھر میں اس کو نا ڈکشنری میں دیکھ رہی تھی کہ یہ تو ہم معنی مراد لیتے ہیں، اصل اس کی کیا ہے. بڑا مجھے لطف آیا جب میں نے اس کو پڑھا کہ شین و را کے معنی ہوتے ہیں شرت العسل و اشرتہ، چھتے سے شہد نکالنا، چھتے سے شہد نکالنا. اب آپ دیکھیں چھتے کے اندر ہوتا کیا ہے، مکھیاں بھی مری ہوئی ہوتی ہیں، موم بھی ہوتا ہے، مکھیوں کے سر، ٹانگے، پاؤں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اس میں سے اصل چیز کو آپ نے نکال لیا. اسی طرح दाबा, घोड़े को दौड़ाकर मालूम करना कि वो किस कदर दौड़ सकता है। तो क्लास से जब मशवरा किया जाता है तो क्या मतलब है इसका कि क्लास कितना आगे जा सकती है, क्या क्या कर सकती है। मशवरे का मतलब पीछे रहना नहीं होता, मशवरे का मतलब होता है कि क्लास की रफ्तार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। घर चलाया जा रहा है तो घर जो है ये कैसे तरक्की कर सकता है। मुल्क के बारे में मशवरा किया जा रहा है तो क्या मशवरा है कि मुल्क जो है वो किस तरह के लोगों के पास कब्जे में आ जाए, कौन से लोग इसके कौमी असेंबली के मेंबर बन जाएं ताकि काम की बागडोर उसको दे दी जाए। तो मशवरा जो है ये अल्लाह ताला के नबी की सुन्नत है, ये बड़ी अच्छी खूबी है, और मशवरा जो है हम सबको जो है वो अपनी अमूमी जिंदगी में करना चाहिए और उसी से लेना चाहिए जो मशवरा देने की अहलियत रखते हों। आपने गजवाए बदर में भी मशवरा किया है ना, कहाँ जो है वो फौज जाकर खड़ी हो जाए, और बड़ा अच्छा मशवरा था। सहाबी ने कहा था कि यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा आगे जाकर आप अपना पड़ाव डाले कि वहां पे चश्मा है, हम उस पर जो है वो कब्जा कर लेंगे, पानी के लिए भी जरूरत आएगी। और दूसरा ये कि चश्मा थोड़ी चढ़ाई पर था तो बारिश भी हुई तो फिसलन नहीं हुई है ना। गजवाए अहज़ाब में आपने मशवरा किया, हजरत सलमान फारसी की राय पर अमल करते हुए आपने खंदक खोदी। गजवाए उहद में भी मशवरा किया, लेकिन चंद जोशीले लोग थे जिसका आपने कहना मान लिया और आप देखें कि बाहर निकल कर जंग करने का फैसला। बाकी बड़े बड़े सहाबा इस राय में नहीं थे, लेकिन वो खामोश थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को मान लिया था और फिर आप देख लें कि जो भी हुआ। तो बहरहाल बहुत सी ऐसी हमें मिसालें मिलती हैं जहां पे मशवरे के बारे में पता चलता है। इसी तरह गजवाए बदर के जो कैदी थे उसमें भी आपने जो है वो मशवरा किया था, लेकिन हजरत अबू बकर और हजरत उमर में इख्तलाफ हो गया था। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ने क्या कह रहे थे कि फिदिया लेकर इनको रिहा कर दिया जाए, हजरत उमर रजी अल्लाह ने कह रहे थे कि नहीं, इनको कत्ल कर दिया जाए। और फिर आपने हजरत उमर रजी अल्लाह ने देखा कि दोनों बैठे हुए रो रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह भी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, है ना, क्योंकि आयात नाजिल हो गई थी। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके पर कि अगर अबू बकर और उमर दोनों एक राय पर मुत्तफिक हो जाते तो मैं इसी के मुताबिक अमल करता, है ना। और हजरत अली रजी अल्लाह को किसी ने कहा था कि आपका दौर जो है वो बड़ा खराब दौर है ना, बड़ी जंगें लड़ाइयां सहाबा के दरमियान भी हुई, जंगे सिफीन हुई, जमल हुई। तो हजरत अली रजी अल्लाह ने क्या किया, कहा था, जवाब ये दिया था, उन्होंने कहने वाले ने ये कहा था कि पहले सहाबा का दौर अच्छा था और आपका अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा था फर्क बस इतना है कि अबू बकर उमर के मशीर हम थे और हमारे मशीर तुम हो। मशीर मशवरा देने वाले जैसे होते हैं ना वैसे ही फिर काम होता है। और वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर, वलीद बिन अब्दुल मलिक जो था वो कैसा था, औरतों का बड़ा शौकीन था और इमारतों का भी बड़ा शौकीन था, बड़ी मतलब उसके अंदर ये बहुत चीज पाई जाती थी ना। और लेकिन उसके मशीर बड़े अच्छे थे कि जाते जाते यानी उसने खिलाफत को शुराइत में तब्दील करना चाहा। वो वसीयत कर गया था कि उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बनाया जाए। आपको पता है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ऐसे ही नहीं खलीफा बन गए थे, वैसे नहीं बन सकते थे, अगर वैसे ही खिलाफत मतलब वैसे ही जैसे कि एक चल रही थी हुक्मरानी के उमैया दौर में क्या था कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जैसे आजकल बाज हुकूमतों में होता है, जैसे आजकल सऊदी अरब में बादशाहत कायम है, बादशाहत तो एक के बाद दूसरा बनता था। और हुआ क्या कि उसका जो मशीर था ना, सलमान बिन रिजा था या ऐसा कोई नाम है, सुलेमान बिन रिजा, कि उन्होंने कहा था कि आप जो है ना वलीद बिन अब्दुल अजीज को भी नाम में लिख दें, और उन्होंने लिखा था। और पता है जब बनू मैया के लोग मस्जिद में जमा हुए, अब ये था कि लिफाफा खुलेगा और इसके अंदर जो नाम आएगा उस पर बैत करनी है, और जब नाम आया तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का था और लोगों ने उस पर जो है वो बैत की थी। तो इस तरह उन्होंने उसने उसको जो है वो तब्दील किया। तो बहरहाल बात क्या हो रही थी, वा उम्रहुम शूरा बैनहुम, के मशवरे से वो आपस के फैसले करते हैं। और फिर उसके बाद सातवीं सिफ्त ये है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो कुछ इनको हमने दिया है इसमें से खर्च करते हैं। और अब आप देख लीजिए कि ये जो खर्च करने वाली सिफ्त है इससे क्या बात पता चलती है कि जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है, इनका अपना कुछ भी नहीं है, تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس میں نفل اور فرض, زکات اور نفلی صدقات سب آ جاتے ہیں. والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون, اور یہ لوگ ہیں جب پہنچتا ہے ان کو ظلم تو وہ بدلہ لیتے ہیں. ینتصرون کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ لینا. پیچھے کہا نا کہ وہ معاف کر دیتے ہیں, ہے نا, آپ نے پڑھا نا ابھی پیچھے ہی کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ. اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صفت کیا ہے, کہ اگر ان پر جو ہے وہ ظلم کیا جائے, بغیو اس کے معنی کیا ہے, کہ اگر ان پر ظلم اور زیادتی ہو تو ہم ينتصرون, تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں, زیادتی نہیں کرتے. اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ معاف نہ کرنا چاہے اور بدلہ ہی لینا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ لینے کی اجازت دی ہے, لیکن قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. آپ پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو ہے خون کے پیاسوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا. حدیبیہ میں آپ نے ان 80 لوگوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی, ہے نا, آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا. اور اسی طرح لبید بن عاصم سے آپ نے بدلہ نہیں لیا تھا جس نے آپ پر جادو کیا تھا, اور وہ یہودیہ عورت کو بھی آپ نے معاف کر دیا جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا, حالانکہ اس زہر کی تکلیف آپ زندگی کی آخری سانسوں تک محسوس کرتے رہے. تو ذات کے لیے تو رسول اللہ معاف کر دیتے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو قاتل تھا وحشی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا. حالانکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا, آپ کی جو لاش تھی اس کا کیا کیا گیا تھا, مسلا کیا گیا تھا, اعضاء کاٹے ہوئے تھے, دل نکالا ہوا تھا, کان کاٹے ہوئے تھے. آپ سوچیں کہ لاش کی بڑی بے حرمتی کی گئی تھی, اور آپ نے جب دیکھا آپ ایسے زور زور سے رو رہے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی بلند آواز سے روتا اس سے پہلے کبھی نہیں سنا گیا, کبھی نہیں ہم نے دیکھا تھا آپ کو ایسے روتے ہوئے. لیکن آپ نے وحشی کو معاف کر دیا, بس کہا تھا میرے سامنے نہ آیا کرے, جب یہ میرے سامنے آتا ہے تو مجھے چچا کی یاد آتی ہے. تو بہرحال جو ہے اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو کوئی ظلم پہنچتا ہے ہم ينتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے, نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا, الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو ينتصرون جو ہے یہاں پہ کس معنی میں ہے, کہ وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں, وہ انتقام لیتے ہیں. تو یہاں پہ اگر کافروں کے لیے اس آیت کو آپ لیں تو معنی یہ ہے کہ مومن جو ہے ظالم سے دبتا نہیں ہے, متکبر کے آگے جھکتا نہیں ہے. ظالموں کے لیے, کافروں کے لیے وہ لوہے کا چنا بن جاتا ہے. اگر ظالم اور کافر مومن کو چبانے کی کوشش کریں گے تو ان کا جبڑا ٹوٹ جائے گا, ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا. تو ظالموں کے لیے وہ نرم چارہ نہیں ہوتے. تو یہ نرم خوئی اور عفو درگزر کی صفت جو ہے وہ کیسی صفت ہوتی ہے, مومنوں کے لیے ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ وجزا سیئۃ سیئۃ مثلھا, اور بدلہ برائی کا برائی اسی کے برابر ہے, کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اصولی قاعدہ یہ ہے کہ بدلے کی جائز حد یہ ہے کہ جتنی برائی کسی کے ساتھ کی گئی ہو اتنی ہی برائی وہ اس کے ساتھ کرے, اس سے زیادہ برائی کا وہ حق نہیں رکھتا. پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دے سکتے. بدلہ جب لیا جائے تو اگر کسی نے ایک کہی ہے تو ایک ہی کہہ سکتے ہیں, آپ دو نہیں کہہ سکتے. پھر فرمایا فمن عفا, پس جو معاف کر دے, و اصلاح اور اصلاح کر لے, فاجرہ علی اللہ, پھر اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اب دوسرا قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے لیکن معاف کر دینے سے اگر اصلاح ہو سکتی ہو تو اصلاح کی خاطر بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے. تو پھر بیوی شوہر سے ناراض رہ سکتی ہے, شوہر بیوی سے ناراض رہ سکتا ہے, بچے بچوں سے والدین ناراض رہ سکتے ہیں, استاد اپنے شاگردوں سے, شاگرد اپنے استاد سے, دوست دوست سے, ہمسایہ ہمسایہ سے, ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے, کوئی ناراض نہیں رہ سکتا. کیونکہ بدلہ لینے کی بجائے اگر اصلاح کی خاطر معاف کر دیا جائے तो मेरा अल्लाह ये कह रहा है कि ये ज्यादा बेहतर है और अल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फाजरहू अल्लाह। इस आयत को बार बार पढ़े कि इसका अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। वादा है मेरा कि मैं इसका वो अजर दूंगा कि इसने इस्लाह की खातिर ये कड़वा घूंट पी लिया, इसने बिगाड़ से बचाने के लिए एक घर को, एक खानदान को, एक फैमिली को, एक सोसाइटी को ये घूंट पी लिया। बंदा कोई घूंट नहीं पीता जो अल्लाह के नजदीक इस गुस्से के घूंट से ज्यादा बेहतर हो जो अल्लाह की खुशनुदी की खातिर पी लेता है। अल्लाह, तो आइए घूंट पिए, आइए जिससे नाराज है उसको माफ कर दें। तो आज क्या करना है, माफ करना है, आज माफी का दिन है। आयात पढ़ी है तो अब जो है इस तजाबू जवाब देना है, लब्बैक कहना है, अल्लाह की आयात का जवाब देना है। तो क्या करना है, आपने फोन करना है, अगर किसी से भी आप नाराज है ना तो स्वीट मैसेज देना है, प्यार का मैसेज देना है। और कैसे करना है, ईमेल भेज सकती हैं, और क्या कर सकती हैं, खत लिख सकती हैं, तोहफा दे सकती हैं, और क्या कर सकती हैं, घर मिलने जा सकती हैं। और ये इतना आसान नहीं है, ये है बड़ा मुश्किल, लेकिन अल्लाह से मैं और आप अपने गुनाहों को माफ करवाना चाहते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। इन्नहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह बेशक पसंद नहीं करता जालिमों को। अच्छा, जालिम कौन है जिनको अल्लाह पसंद ही नहीं करता? जालिम वो हैं जो पहले मजलूम थे फिर जालिम बन गए। मजलूम थे तो फिर जालिम कैसे बन गए? असल में हुआ ये कि बदला लेते लेते उन्होंने बदला लेने में हद से बढ़ गए। एक किसी ने कही थी तो दो उन्होंने कह दी, और कोई कुछ कह रहा था उन्होंने मुकाबले में वैसा ही मुकाबला किया, तो अब वो जालिम बन गए। आप देख लें कि वो जालिम बन गए। अब ये एक और कायदा बताया गया कि किसी शख्स को जुल्म का इंतकाम लेते लेते खुद जालिम नहीं बन जाना चाहिए। यहां पे तीन कायदे बताए जा रहे हैं, माफ कर देना ज्यादा बेहतर है, नंबर दो बदला लिया जा सकता है जितना कि किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, और नंबर तीन ये कि बदला लेते लेते हद से मत बढ़ जाओ। अगर बदला लेते हुए आप हद से बढ़ गए तो फिर क्या है कि तुम जालिम बन गए और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। फिर फरमाया वला मन इंतसरा, और जो इंतकाम ले और जो बदला ले बाद जुल्म ही, अपने ऊपर जुल्म करने के बाद, फाउलाइका मा अलैहिम मिन सबील, तो यही लोग हैं, नहीं इन पर कोई इल्जाम, जो तो वो लोग जो के जब उन पर जुल्म हो जाए और जुल्म होने के बाद वो इंतकाम लें, अपना बदला ले लें, तो ऐसे लोग जो हैं उनको मलामत नहीं की जा सकती, उनको नहीं बुरा भला कहना चाहिए, उन्होंने तो बस अपने ऊपर जो जुल्म हुआ था उसका बदला ही लिया था ना, फिर किसको मलामत करें। इन नमस सबीलु, सिर्फ इल्जाम है, मलामत है, अल्लाजीना उन लोगों पर, यज़लिमुन्नासा जो जुल्म करते हैं लोगों पर, जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, व यबगून फिल अर्दी और फसाद करते हैं जमीन पर, बिगैर हक बगैर हक के, उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो आप देख लीजिए यहां पर क्या बताया जा रहा है कि वो लोग जो हैं उनको मलामत करनी चाहिए, नंबर एक जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, दूसरी बात क्या करते हैं कि वो लोग जमीन पर नहक फसाद पैदा करते हैं, जमीन पर जो है वो नहक ज्यादतियां करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो लोग जो हैं ऐसे बुरे लोग हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, यही वो लोग हैं कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है कि इन्होंने जुल्म की इब्तदा भी की, फिर जो है वो इंतकाम जब लेना चाह रहे थे हद से बढ़ गए, या भूना फिलर दी बगावत आगे बढ़ गए, बगैर हक की बगैर हक के बदला लिया तो उतना नहीं लिया, हद से बढ़ गए, उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, तो अब ये लोग जो हैं इनके लिए दर्दनाक अजाब है। आप यूं समझ लें तो ये या तो इन्होंने जुल्म की इब्तदा की है या फिर इंतकाम लेने में हद से बढ़ गए हैं, इसलिए इन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि आप मजलूम होते हैं लेकिन आप जालिम बन जाते हैं जब बदला लेते हैं तो हद से बढ़ जाते हैं, जुमले बोलकर, हाथ चलाकर, जबान चलाकर, किसी के साथ बदसलूकी करके। तो याद रखिएगा कि हमें क्या करना है, अफ़्व दरगुजर से काम लेना है और सबर करना है। क्यों? वलमन सबरा वगफरा इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, और जो कोई सबर करे और माफ कर दे। ये दो सिफात का जिक्र किया जा रहा है, नंबर वन सबर और नंबर दो माफ कर देना, गफारा। और सबर क्या होता है कि सहना, तहमुल, बर्दाश्त करना, साबित कदम रहना और किसी की कड़वी कसैली बातों को सुनना और मुंह जो है उसको बंद कर लेना। बाज़ुकात आंसू बह रहे होते हैं, दिल बड़ा जख्मी होता है, बड़ा दिल चाहता है दो चार मैं भी सुना दूं, और बड़ी देर सबर किया है, जिंदगी के कितने साल सबर किया है, लेकिन हुआ क्या कि सबर करते करते फिर हम ये कहने लगे कि आखिर कब तक सबर करती, जिंदगी के शादी के 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, आज तो मैंने खरी खरी सुनाई, अब मेरी औलाद भी बड़ी हो गई है, अब मुझे इस बूढ़े की क्या जरूरत है, और मैं तो खुद, मुझे तो इसकी कुछ जरूरत ही नहीं है ना, बड़ी देर सबर किया, अब जो है बेसब्री कर दी, सारा कुछ जाया हो गया, मुंह जो खोल दिया। या ये कि आपने कुछ देर सबर किया, अब कोई किसी ने तंग किया, आप बोल पड़े कि फलां फलां वक्त में फलां फलां नेकी, और फिर अब तुम ऐसे ऐसे करते हो, अब भी नेकी जाया हो गई। तो क्या है कि सबर करें, सारी जिंदगी इसकी कोई हद नहीं है मेरी बहनों, इसकी कोई हद नहीं है। वह गफर और माफ करना, और माफ करने भी की भी कोई हद नहीं है कि कितनी अजियत को माफ करना है और कितनी को माफ नहीं करना है ना, और कितनी देर माफ करना है। तो सबर से भी अगला मुकाम यह है कि आदमी खुश दिली से माफ कर दे, और सबर से भी अगला मुकाम यह है वह गफरा के बावजूद इंतकाम और बदला लेने की ताकत है और वो माफ कर दे। वो बकर सदीक रजी अल्लाह हो, सूरत नूर की आयतें नाजिल हो गई, वलियाफू वलियस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिर अल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने क्या जवाब दिया, बला वल्लाना नुहिब्बु अन तगफिर लना या रब्बिना। बाज लोग बूढ़े माँ बाप होते हैं और साथ मिलजुल के नहीं रहते, कहते हैं लो जी कंबाइंड फैमिली सिस्टम के बड़े मसाइल हैं, और बाज औकात लोग शौकिया रहते हैं, शौकिया तो जरूरत नहीं है, अलग हो जाना चाहिए, लेकिन जहां मजबूरी हो, माश की तंगी है या बूढ़े माँ बाप अकेले नहीं रह सकते, अब उनको जरूरत है तो फिर मिलकर रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो लोगों से मिला जुला रहे और इनकी इजाओं पर सबर करे, इससे बेहतर है जो मिलना जुलना छोड़ दे और इजाओं पर जो है वो सबर ना करे, है ना। तो एक हदीस में आता है कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़े को खत्म करने के लिए माफ कर दे तो मैं उसके लिए जन्नत के वस्त में घर की जमानत लेता हूं। तो असल बात क्या है, सबर और फिर माफ कर देना। इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, और ये बेशक अलबत्ता हिम्मत के कामों में से है, ये बेशक उलुल अज़्मी के कामों में से है, ये मामूली काम नहीं है। अपने जो जिगर है ना इसमें जान पैदा करें, ये सबर करना, ये माफ कर देना मामूली बात नहीं है, ये बड़े जो है वो हिम्मत वालों लोगों का काम है। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन वलीयिन मिन बादिही, और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह बस नहीं इसके लिए कोई दोस्त इसके बाद। मानी क्या है कि जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे इसका संभालने वाला अल्लाह के बाद कोई नहीं है। मानी क्या है कि जिसने कुरान जैसी किताब से हदायत हासिल न की, जिसने रसूल जैसे पैगंबर से रहनुमाई हासिल न की, ऐसा वो शख्स है जिसने हदायत से मुंह मोड़ लिया, जिसने खुद हदायत से मुंह मोड़ लिया तो फिर अल्लाह ने भी उसको गुमराही में फेंकने का फैसला कर दिया, और जिसको अल्लाह गुमराही में गुमराह करने का फैसला कर दे फिर इसका ना कोई दोस्त है निम्बाद ही इसके बाद, गोया के अब अल्लाह के बाद इसका कोई दोस्त नहीं है। अल्लाह दोस्त था तभी तो अल्लाह ने पैगंबर को भेजा और किताब को नाजिल किया, और फिर इन लोगों का हाल क्या होगा? वतर जालिमीन लम्मा राबुल अजाब, और तू देखेगा जालिमों को, जालिमीन जालिम की जमा है, और तू देखेगा कि ये जालिम लोग जो हैं, लम्मा जब राबुल अजाबा, वो देखेंगे अजाब को, यकूलून हल इला मरद्दिम मिन सबील, कहेंगे क्या वापस लौटने की भी कोई राह है? जब अजाब को देखेंगे तो कहेंगे अब पलटने की भी कोई सबील है? क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में जाकर नेकियां करने का एक मौका मिल जाए? क्या हमें दोबारा अमल करने के लिए चांस दिया जा सकता है? हल इला मरद्दिम मिन सबील, मरद ये ज़र्फ़े ज़मां भी है और मकाम भी है, तो क्या लौटने का वक्त हो सकता है? ऐसा वक्त हो सकता है कि हमें फिर जो है चंद घड़ियां मिल जाएं और हम तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, हम नेकियां कर लें? और या फिर ये कि या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां जाकर हम नेकियां कर लें? हल इला मरद्दिम मिन सबील व तराहुम, और तू देखेगा इनको, युरदूना अलैहा, पेश किए जाएंगे इस पर, और तुम देखोगे कि ये इस पर पेश किए जाएंगे। अरज होता है ना, चौड़ाई के लिए भी कहते हैं, अर्जी पेश करना, किसी को कहीं पेश करना, हाजिर कर देना। अलैहा की जमीर जहन्नुम के लिए आई है कि वह जहन्नुम पर पेश कर दिए जाएंगे। खाशईना, जब पेश किए जाएंगे तो हाल क्या होगा? झुके हुए होंगे। खाशईना, आजजी उनके अंदर होगी, जैसे कुबड़े हो जाना, झुक जाना। अब झुके हुए क्यों होंगे? अताअत की वजह से नहीं, बल्कि क्या है, मिनज़ुल, जिल्लत से, जिल्लत के मारे वो कुबड़े हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि जुल जो लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसके मानी क्या होते हैं, कि जोर और कुव्वत के आगे दब जाना। वदोरिबत अलैहिमुज़ जिल्ला, और आप पढ़ चुकी हैं, वलकद नसरकुमुल्लाहु व अंतुम अज़िल्ला बिबद्र, कि मुसलमान उस दिन ज़ेरदस्त थे, कमजोर थे, काफिर तादाद में ज्यादा थे, असलहा भी ज्यादा था, अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की थी, है ना? लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इनकार करने वाले जो हैं दबे हुए हैं, झुके हुए हैं, कुबड़े हो रहे हैं, आजी कर रहे हैं जिल्लत से। अब जैसे कोई शख्स, आप सोचे तो सही कि सामने जहन्नुम में पूरी हौलनाकियों के साथ, आप जरा तसव्वुर में लाएं कि कहीं आग का गड़ा है, आग पूरी हौलनाकियों के साथ है, और उसमें आग के गड़े में उसको गिराया जा रहा है, और वो झुका हुआ है और अपने आप को बचाना चाह रहा है, और दबा हुआ जिल्लत से, यंजूना, वो देखेंगे। अब वो देख रहे हैं, मिन तरफिन, मिन तरफिन, तरफ जो है ये निगाह के, निगाह को कहते हैं, जैसे एक पलक का झपकना नहीं होता। अब जो है वो नजर से कैसे देख रहे होंगे, खफीन, और खफीन का लफ्ज जो है ये सिर्फ मुशब्बा है, पोशीदा, छुपी हुई। अब वो नजर डाल रहे हैं, नजर बचा बचा कर। इंसान का ये हाल होता है कि जब कोई हौलनाक मंजर उसके सामने होता है और उसको पता हो रहा होता है कि अब मैं जो है वो इस जंगल में जाने वाला हूं, जो सामने मुसीबत आ रही है, तो पहले तो डर के मारे आंखें ही बंद कर लेता है, अब भी रहा नहीं जाता तो कभी खोलता है थोड़ी सी आंख, देखता है छुपा छुपा के, इधर उधर से छुप कर देखता है हौलनाकी के मारे कि कितनी दूर है, हिम्मत नहीं पड़ती कि नजर भर कर देखे। तो कैसे देखता है, तरफिन खफीन, नीची निगाह करके, छुपा कर नजर को, आंख के किनारे से, तरफ क्या है, आंख के गोशे को कहते हैं, है ना, आंख का किनारा, आंख के किनारे से देखता है और आंख को बंद कर लेता है, क्योंकि जहन्नुम पूरी हौलनाकियों के साथ है। वकालल्लज़ीना आमनू, और कहेंगे वो लोग जो ईमान लाए, क्या कहेंगे, इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अन्फुसहुम, बेशक अल खासिरीना, खसारे में रहने वाले, खासिर की जमा है, अल्लज़ीना वो लोग हैं, खसिरू जिन्होंने खसारे में डाला, अन्फुसहुम अपने आप को, व अहलीहिम और अपने घर वालों को, यौमल कियामती कयामत के दिन। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि उस वक्त अहले ईमान पुकार उठेंगे कि वाकई ये हैं वो लोग जिन्होंने आज कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। वो पुकार उठेंगे, क्योंकि अहले ईमान जन्नत में भी जहन्नुम वालों को देख रहे होंगे, आग में जलते हुए लोगों को देख रहे होंगे। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जबान पुकार उठती है, बेसाख्ता मुंह से निकल जाता है कि वाकई ये लोग खसारे में हैं, हमने बड़ा अच्छा किया, हमने ये काम कर लिया, ईमान ले आए, रसूल का साथ दिया और कुरान पर ईमान ले आए। और किस दिन ये पुकारेंगे? यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। अला, इसके दो मानी मैंने बताए हैं पहले भी। एक इसके मानी है कि लोगों सुनो, खबरदार हो जाओ, और दूसरी बात क्या, अल्लाह सुनता है। इन ज़ालिमीन फी अज़ाबिन मुक़ीम, बेशक जालिम लोग जो हैं वो हमेशा रहने वाले अज़ाब में हैं। तो बात क्या है कि याद रखो, गुनाहगार पड़े हैं सदा के अज़ाब में। तो अब क्या है कि खबरदार रहो, जालिम लोग मुस्तकिल अजाब में हैं और इनका कोई हामी और मददगार नहीं होगा। वमा काना लहुम मिन औलिया, और नहीं होगा इनका कोई भी दोस्त। वली की जमा है ना औलिया, और दोस्त होता है जो मुसीबत में काम आए, है ना, दोस्त कहते हैं उसको जो मुसीबत में काम आए। और जब भी मुसीबत आती है ना, तो होती वो मुसीबत है लेकिन एक कसौटी होती है, इससे पता चल जाता है मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। कोई इनका वली नहीं है। यंसुरू नहुम, के मदद करे इनकी, मिंदू निल्लाही, अल्लाह के सिवा। अब अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। फमन युद्लिल्लाहु, और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह, फमा लहू मिन सबील, पस इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इन्होंने अपने आप को गुमराही में फेंक दिया, ना कुरान पर ईमान लाए ना रसूल पर ईमान लाए, अब इनके लिए बचाव की कोई सबील नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? इस्तजीबू लिरब्बिकुम, लोगों कबूल करो अपने रब की बात, अपने रब का हुक्म, अपने रब का फैसला। अपने रब का हुक्म मान लो लोगों, तो अल्लाह का हुक्म क्या है? ईमान लाओ, रसूल का साथ दो, किताबे हदायत जो है उसको पढ़ो। इस्तजीबू लिरब्बिकुम, कबूल करो अपने रब के लिए, इखलास इख्तियार करो, है ना। तो हम अपने रब के लिए कैसे कबूल करेंगे, हम कैसे जवाब देंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ना दाएं देखे ना बाएं, ना आगे देखे ना पीछे, ना मुश्किलात देखे ना सहूलतें, और क्या है कि अल्लाह की अतात इख्तियार करें। क्यों? मिन कबल अय्यातिया यौमन, इससे पहले कि वो दिन आ जाए, ला मरद्द लहू मिन अल्लाह, कि जिसे नहीं लुटाया जाना इसका अल्लाह की तरफ से। तो उस दिन के आने से पहले हम अल्लाह की अतात इख्तियार कर ले, कि जिस दिन को कोई हटा नहीं सकता, जिस दिन को कोई बचा नहीं सकता, यानी वो दिन जो है वो हमसे हटाया नहीं जा सकता, हमसे टल नहीं सकता। मालकुम मिन मलजइन व मालकुम मिन नकीर, मालकुम नहीं है तुम्हारे लिए मिन मलजइन कोई जाए पनाह, ना कोई पनागा है और ना ही कोई जाए पना है। तो यहां पे मल जान इस्तेमाल हुआ है, आप देख लें कि ना कोई पना है और ना ही कोई पनागा है। यौमा दिन, उस दिन, वमा लकुम मिन नकीर, और नहीं है तुम्हारे लिए ना कोई रोकने वाला और ना ही कोई मददगार। और नकीर जो है नकारा से है, और इसके अंदर दो बातें पाई जाती हैं, याद रखिएगा। नकीर का मादा नकारा से है, बुनियादी तौर पर दो बातें पाई जाती हैं, एक है अजनबियत और दूसरी है नागवारी। तो नकारा जो है इसके मानी क्या है? इसके मानी ये हैं कि किसी चीज का नागवार होना, नामाकूल होना और नाजेबा होना। तो ऐसी चीज को जो नागवार होती है उसको देखकर हम क्या कहते हैं? नाराजगी का इजहार करते हैं, उसको पहचानते ही नहीं है ना। आपको पता है ना कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास उनके भाई आए थे, आप सूरत यूसुफ में भी इसको पढ़ सकती हैं, कि भाई तो उनको पहचान ना सके और वो अपने भाइयों को उन्होंने पहचान लिया, और भाई उन जो थे भाइयों के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम अजनबी थे। तो अजनबियत के मानी में भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। और क्या है कि जब फरिश्ते आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए के पास और खाना नहीं खा रहे थे, तो जब उन्होंने देखा कि इनके हाथ उठते नहीं हैं, तो ये बात भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अच्छी नहीं लगी ना। और असल वजह क्या थी कि वो पहचानते नहीं थे। इसी तरह मुनकर नकीर, उससे आप याद रख सकते हैं। इसी तरह जो है वो या मरूना बिल मारूफी व यनहाउना लिल मुनकर, मुनकर से मना करना, नागवार चीजों से मना करना, तो दोनों मानी में यह इस्तेमाल होता है। इसके मुफस्सरीन ने फिर कई मानी बयान किए हैं, क्योंकि इसके अंदर दो बुनियादी बातें पाई जाती हैं, एक अजनबियत और दूसरा नागवारी। तो एक मानी क्या है कि इसके जो है फिर मानी ये हैं कि और तुम इजहारे नाराजगी भी ना कर सकोगे। नकीर के मानी क्या है कि इजहारे नाराजगी भी ना कर सकोगे, जैसे नागवार लगेगा अजाब और सब कुछ, लेकिन जहन्नुमी इजहारे नाराजगी नहीं कर सकेंगे। फिर दूसरे मानी क्या है कि तुम अजनबी नहीं होगे, सब तुम जानते पहचानते होगे, क्योंकि जहन्नुम के बारे में बहुत सी कुरानी आयात और हदीस मिलती है ना सजा के बारे में। फिर तीसरी बात क्या है कि भेष बदलकर छुप भी नहीं सकोगे, अजनबी नहीं बन सकोगे। चौथा मतलब भी है कि उस दिन तुम जैसी भी हालत में होगे इसमें कोई भी तब्दीली ना ला सकोगे। फाइन आरदू, पस अगर वो मुंह फेर लें, अगर अहले मक्का मांग के ना दें, फमा अरसलना का अलैहिम हफीजा, पस नहीं भेजा हमने तुझको इन पर निगेबान बनाकर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपकी बात नहीं मानते तो आप इन पर हफीजा नहीं है, निगेबान नहीं है। जैसे कुरान में एक और जगह फरमाया, फइन्नमा अलैकल बलागु व अलैनल हिसाब, सूरत रात, सूरत रात में आपने ये पहले ही पढ़ा है। इसी तरह सूरत गाशिया आयत 22 में पढ़ चुकी हैं, फजक्किर इन्नमा अंता मुजक्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। तो आपका काम क्या है, इन अलैका इल्लल बलाग, नहीं तुझ पर मगर पहुंचा देना। तो आपका काम पहुंचाना है, आपके जिम्मे क्या है कि आप नजीर और बशीर बनाकर भेजे गए हैं, जबरदस्ती अमल करवाना नहीं है। वह इन्ना इजा अजकनल इंसाना, और बेशक जब हम चखाते हैं इंसान को, मिन्ना अपने पास से रहमतन रहमत, फरीहा बिहा, तो वो खुश होता है। अब आप देखिए कि यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान का हाल बता रहे हैं कि इंसान का हाल ये है कि जब अल्लाह ताला जो है उसको नवाजते हैं तो बड़ा खुश होता है। वाइन तुसीब हम सैया तो, और अगर पहुंचती है इनको सख्ती, अगर जो है माली तंगी हो जाती है, या ये कि सेहत की बजाय बीमारी आ जाती है, या कोई मुश्किल आ जाती है, आजमाइश आ जाती है, तो बिमा कद्दमत ऐदीहिम, इसके बायस जो आगे भेजा इसके हाथों ने, इसके अपने अमलों की वजह से इस पर सैया तो ना जाती है, फाइनल इंसान कफूर, तो बेशक इंसान बड़ा ना शुक्रा है। तो फिर इंसान क्या करता है, फिर जो है वो नाफरमान बन जाता है। तो कफूर जो है ये भी मुबालगे का सीगा है कि फिर इंसान जो है वो अल्लाह नियमते पाकर अल्लाह की नाफरमानी करने लगता है। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बात समझाना चाहते हैं और अमल के तौर पर, उसूल के तौर पर जो बात हम सबके सामने लाना चाहते हैं, वो ये है कि तंग जर्फी जो है ना वो इंसान के अंदर पाई जाती है। और तंग जर्फी क्यों पाई जाती है कि नेमतें मिलती हैं तो इंसान जो है इतराने लगता है। फरेहा जो, इसके दो मानी होते हैं, ये सिर्फ महमूद भी है मजमूम भी है। और यहाँ पे मजमूम के मानी में है कि नेमतें मिलने पर वो इतराता है, खुश होता है। पहुंचती है मुसीबत जो इसके अपने अमलों की वजह से होती है, जो इसने इसके हाथों ने आगे भेजा, तो फिर इंसान नशुकरा बन जाता है, फिर बावेला करने लगता है, फिर नशुकरी करने लगता है और भूल जाता है। क्यों इंसान ऐसे करता है, आगे बताया, लिल्लाही मुल्कुस समावाती वल अर्द, वो भूल जाता है कि अल्लाह भी है जिसके पास इख्तियार है खुशियां देने का और मुसीबतों में मुब्तिला करने का, जिसके पास इख्तियार है हसना और सैया का, तो वो भूल जाता है कि अल्लाह भी है, क्योंकि उसका अकीदा ठीक नहीं है। फरमाया, लिल्लाही मुल्कुस समावाती वल अर्द, बादशाहत अल्लाह के लिए है आसमानों की और जमीन की। असमावात तो जमाया, लेकिन अर्द वाहिद नजर आ रहा है, ये इसम जिन्स है। आसमानों और जमीन की बादशाहत हकूमत अल्लाह की है। यखलुकु मा यशा, वो पैदा करता है जो चाहता है। अब यहां पे बताया जा रहा है कि मालिक भी वही है, खालिक भी वही है, तो फिर हाकिम भी वही होना चाहिए, है ना। तो असल बात क्या है, वो जो चाहता है जैसे चाहता है पैदा करता है। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने पैदाइश के मरहले का जब जिक्र किया तो पैदाइश की चार किस्में बताई हैं। तो पैदाइश की पहली किस्म क्या है, यहबूल में यशाउ इनासन, वो देता है जिसको चाहता है बेटियां। वहाब का मतलब क्या होता है, अता करना। कैसे अता करना, बगैर उसके हक के उसको देना। तो अल्लाह जब किसी को देता है तो बगैर उसके हक के देता है ना, तो जिसको चाहता है इनासन देता है, क्या यानी बेटियां देता है। और आप देख लीजिए कि इनासन जो है ये औरतों को कहा जाता है और इसका वाहिद है उनसा। तो पहली किस्म क्या पता चली कि बाज लोगों को अल्लाह क्या देता है कि सिर्फ जो है वो बेटियां देता है। वह यह भूल नहीं यशा उजुकूर, और जिसको चाहता है बेटे देता है। जुकूर जो है ये जकर उन जो है इसका वाहिद है, और जुकूर के मानी क्या है, बेटे, और जिसको चाहता है वो बेटे देता है। तो मानी ये है कि एक बंदा है जिसको सिर्फ बेटे बेटे दिए, और एक है जिसको सिर्फ बेटियां दी, दो किस्मों का जिक्र किया। अब तीसरी बात क्या है, औ युज़व्विजुहुम, या फिर वो जोड़े बना देता है, कैसे, ज़ुकरान व इनासा, बेटे और बेटियां। ठीक है, तो ज़ुकरान का वाहिद भी ज़करुन है, ज़ुकूर का भी और ज़ुकरान का भी वाहिद क्या है, ज़करुन। अच्छा कैसे जोड़े होते हैं कि दो बेटियां तो दो बेटे, तो आपको पता है ना ज़ौज के एक मानी क्या होते हैं, जोड़ा जोड़ा, और दूसरे मानी क्या होते हैं, किस्म किस्म के मानी में भी होता है, तो मिला जुला कर भी देता है। अब मिला जुला कर कैसे देता है कि तीन बेटे हैं तो एक बेटा है और तीन बेटियां हैं तो दो बेटे, मिला जुला के तो कुछ बेटे और बेटियां दे दी। समझ आ गई बात की। अब ये कौन सी किस्म है, ये तीसरी किस्म है। अब चौथी किस्म को देखिए, वयज अलु मै यशा अकीमा, और बना देता है जिसको चाहता है बांझ। आइन काफ मीम से है, और ये हवाओं के लिए भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है कि वो हवाएं जो चलती हैं लेकिन बारिश ना लेकर आए, तब उसके लिए भी आता है। तो मनहूस बेखैर चीज के लिए आता है। और याद रखिएगा कि अकीम लफ्ज जो है जमा है इसकी इकाम, अगर मर्दों के लिए हो तो इकाम जमा है, औरतों के लिए हो तो उकम जमा है। बहरहाल बात क्या है कि फिर कुछ को कुछ भी नहीं देता, क्या कर देता है, बांझ हो जाते हैं। तो अकीम यहां पे मर्द और औरत दोनों के लिए आया है कि बाज मर्दों के अंदर ये सलाहियत नहीं होती, औरतों के अंदर भी नहीं होती, तो वो बेऔलाद रह जाते हैं। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वो जानने वाला है और कुदरत रखता है। तो मानी ये है कि अल्लाह ताला जैसे चाहे जो चाहे पैदा करें। अच्छा यहां एक बड़ा लतीफ सा नुक्ता है कि जब चार किस्म की जो है वो अल्लाह ताला ने जिक्र किया लोगों का कि औलाद को देने या ना देने के लिहाज से चार किस्में हैं, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने किसका जिक्र किया, बेटियों का जिक्र किया। क्यों सबसे पहले बेटियों का जिक्र किया, कि अहले मक्का जो थे वो बेटियों को जो थे वो समझते थे कि बेटियां जो हैं वो जलील हैं, हकीर हैं, ये जो हैं वो हमें फायदा नहीं देती, और बेटियों के पैदा होने पर वो सोग मनाते थे। और ये जमाना जाहिलियत में होता था, और आज भी लोग करते हैं, है ना, आज भी लोग बेटी की पैदाइश पर मुंह बसोर लेते हैं और मुबारकबाद कोई दे तो बुरा समझते हैं। पहले की नस्बत कमी आई है, लेकिन फिर भी ऐसे वाकयात हमें मिलते हैं। और एक नंद बताने लगी अपनी भाभी के बारे में कि जब उसके तीसरी या चौथी तीसरी शायद बेटी पैदा हुई, तो जब वो हॉस्पिटल गई तो अंदर से वार्ड से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी कि मां रो रही थी कि मेरे अल्लाह ने बेटी दे दी ना। हजरत वासिला बिन अस्का रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं जिस औरत के बतन से पहले लड़की पैदा हो वो मुबारक होती है। बहरहाल तो एक वजह यह बताई जाती है कि इसलिए कि अहले मक्का बेटियों को बायसे नंगो आर समझते थे, जिल्लत का बायस समझते। तो अल्लाह ने सबसे पहले बेटियों का जिक्र किया कि बड़ी नेमत है ये, मैं जिसको चाहता हूं दे देता हूं। अच्छा दूसरा एक और बात भी है कि अगर आप गौर करें तो रदीफ काफिया जो है पहले क्या है, फइन्नल इंसाना कफूर, फिर आयत 49 में क्या है, लिमन यशा उज़्ज़कूर, है ना, और अगली आयत में भी इन्नहु अलीमुन कदीर, रा रा है ना, तो एक रदीफ काफी है। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, आगे जो आयत है, आयत 51, कहते हैं कि यहूदियों ने जो है वो एक एतराज किया, और उनका एतराज क्या था, उन्होंने ये मुतालबा किया कि हम आप पर ईमान कैसे ले आए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना आप खुदा को देखते हैं और ना आप बिल मुशाफा उनसे गुफ्तगू करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे कलाम करते थे और अल्लाह को देखते थे, आप तो ऐसा करते ही नहीं, और अगर आप ये पूरा कर दें तो हम ईमान ले आए। तो अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल कर दी और क्या फरमाया, वमा कान अली बशरिन, और नहीं है किसी इंसान के लिए, अयुकल्लिमहुल्लाहु, के बात करे इससे अल्लाह, कलाम करे इससे अल्लाह, इल्ला वाहियन, मगर इल्हाम। और ये याद रखिएगा कि वाहियन जो है ये वही की पहली किस्म है, और वही किसे कहते हैं, इशारतुन सरीयतुन फी खुफिया। और इमाम रागिब ने वही के ये मानी बताए कि खुफिया इशारा लेकिन तेजी के साथ। तो वही क्या होता है कि खामोशी से, चुपके से बात एक दिल में डालना, लेकिन वो बात जो डाली जाए वो तेजी से डाली जाए, है ना। तो वाहियन, और ये वाहियन क्या है, इसके माने ये हैं कि इल्का कर देना या इल्हाम कर देना। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती हैं कि जैसे आपके इल्का और इल्हाम की कैफियत को, कि पहले जो वही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो सच्चा ख्वाब था, जो कुछ आप नींद की हालत में देखते वो बेदारी में सुबह की रोशनी की तरह जाहिर होता। ये बुखारी की रवायत है ना। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि काबा का तवाफ कर रहे हैं, है ना। सूरत फतह आयत 27 में आप इसकी तफसील पढ़ेंगी। सुलह हुदैबिया से पहले आपने ये ख्वाब देखा था, तभी तो आप फिर ने सुलह हुदैबिया का सफर किया था। फिर इसी तरह जो है वो, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से फिर हमें क्या बात पता चलती है कि अंबिया का ख्वाब भी वही की एक शक्ल होता है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने ख्वाब देखा कि बेटे को ज़िबा कर रहा हूं। तो पहली किस्म वही की क्या है, वाहियन। और वाहियन से मुराद क्या है, इससे मुराद है इल्का या इल्हाम, जैसे दिल में एक बात डाल दी जाए, या फिर ये है कि ख्वाब में जो है वो चीज नजर आए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें बहुत सी ऐसे हमें वाक्य जो है मिलते हैं। अच्छा, वही की फिर दूसरी किस्म देखते हैं, ओ मिम वराए हिजाबिन, या से पीछे पर्दे के। वरा पीछे को कहते हैं ना, तो हिजाब पर्दा, तो पर्दे के पीछे से। इसके माने क्या हैं, इसके माने ये हैं कि जिस तरह मेराज के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की दूसरी किस्म से भी मुशर्रफ किया गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का जो हुक्म दिया, तो आप जो बार बार जाते थे और कहते थे, 50 नमाजें थी ना, फिर 5 तक हुई, तो उसमें क्या था कि आपके और अल्लाह के दरमियान में जो था वो हिजाब था। तो ये वैसा ही हिजाब था कि जैसा दामने तूर में मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान था। तो ये है कि ओ मिन वराई हिजाब। और मजीद आप इसकी तफसील कहाँ पढ़ेंगी, सूरत नजम की आयत नंबर 9 और 10 में। फिर तीसरी किस्म है वही की, ओ यूरसिला रसूलन, या वो भेज दे रसूल को। रसूल से मुराद यहाँ क्या है, फरिश्ता है। ये बात याद रखिएगा कि रसूल भेजे हुए को कहते हैं, और ये लफ्ज रसूल के लिए भी आता है, पैगंबरों के लिए भी, और फरिश्तों के लिए भी आता है। या वो भेज दे फरिश्ते को, फयू ही आपस वो वही करे, बे इज नहीं उसके हुक्म से, किसके हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, मा यशा, जो वो चाहे। तो ये वही की तीसरी शक्ल है, और इस शक्ल में क्या है कि फरिश्ता आता है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो आप पर नाजिल होते रहे, तो कैसे नाजिल होते रहे, आपके दिल पर। मुराद क्या है, کہ آپ کو تعلیم دیتے تھے، آپ کے دل پر نازل ہوتے تھے، کس طرح قرآن پورا کا پورا جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تو نمبر ون یہ. اور کبھی جو ہے وہ کیسے ہوتا تھا کہ جب یہ صورت ہوتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ تک وہی جو دے پہنچاتے تھے، تو کیسے ہوتا تھا؟ آپ کے دل پر نازل ہوتے. اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ آپ کے لیے یہ صورت بڑی تکلیف دہ ہوتی، پہلے آپ گھنٹیاں جیسی بجنے کی آواز سنتے. تو گھنٹیاں بجنے کا مطلب کیا ہوتا؟ کہ آپ کا تعلق دنیا سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا، آپ کے ظاہری حواس کام نہیں کرتے تھے، آپ کی تمام تر توجہ جو ہے وہ وہی کی طرف ہو جاتی. جیسے آپ کا بھی سبق بہت توجہ سے سن رہی ہوں، آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. اس شدت تکلیف سے آپ کو بعض دفعہ سخت سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جاتا تھا اور آپ پر شدید بوجھ اس کا پڑتا تھا. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مجھ سے وہی لکھوا رہے تھے کہ آپ کی ران میری ران پر تھی، وہی آنے سے آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی کہ میں ڈرا کہ کہیں میری ران بوجھ سے ٹوٹ نہ جائے. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے کہ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اور وہی آنا شروع ہوتی تو اونٹنی بوجھ کے مارے بیٹھ جاتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو وحی کی شکل تھی کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اور اس میں نا وحی جبرائیل علیہ السلام تین طرح سے آتے تھے. کیسے؟ کبھی تو آپ اپنی اصلی شکل میں آتے، اصلی شکل میں رسول اللہ نے دیکھا نا آپ کو کہ آپ کا ایک پر آسمان اور زمین کے درمیان چھایا ہوا تھا، اور آپ نے اصلی شکل میں دیکھا 600 پر تھے، ہے نا. دوسری کیا تھی؟ کہ عام انسان کی شکل میں بھی جبرائیل علیہ السلام آئے. دلیل دیجئے. حدیث جبرائیل میں ہے، عام ایک مسافر کی شکل میں تھے، کوئی پہچان بھی نہ سکا. اگر گہیا قلبی کی شکل میں ہوتے تو صحابہ پہچان لیتے نا. تو دلیل کیا ہے عام انسان کی شکل کی؟ حدیث جبرائیل. تیسری جو مثال ہے وہ ہے کہ حضرت گہیا قلبی کی شکل میں آتے. جبرائیل علیہ السلام کیسے آتے؟ حضرت گہیا قلبی، یہ صحابی تھے، بڑے ہی خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں بھی آتے. تو بہرحال یعنی جو فرشتہ جو ہے وہ آتا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے، یعنی تیسری قسم کی مزید تین قسمیں. وہ خیر آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پس وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو وہ چاہے، اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ عالی مرتبہ ہے. تو علو سے ہے، بلندی کے لیے آتا ہے کہ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. حکیم، حکمت والا ہے. تو پھر اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ یہود کا مطالبہ کرنا کہ آپ کے پاس آپ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام کیوں نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ آیتیں نازل کر دی. اور معنی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، جیسے چاہے جب چاہے جو ہے وہ اپنے کلام کو بھیجے. تو یہ تین طریقے ہیں جس طرح جو ہے وہ وحی بھیجی جاتی ہے. تو یہ جو اور آپ نے اگر آپ غور کریں گی تو اسی سورت کی بالکل جو ابتدائی آیتیں آپ نے پڑھی تھی، تو وہاں پہ بھی آپ نے جو ہے وہ وحی کے بارے میں پڑھا تھا، ہے نا. آیت نمبر 3، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی گئی، اسی طرح دوسرے نبیوں کو بھی دی گئی. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ کہ تین طریقے جو تھے وہ دوسرے انبیاء کے لیے بھی استعمال کیے گئے، اور اللہ نے جو بھی طریقے استعمال کیے اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، بڑے حکیمانہ ہیں. وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے، إِلَيْكَ آپ کی طرف، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح اپنے پاس سے. تو روحن جو ہے اس کے کیا معنی ہے؟ روحن جو ہے اس کے ایک معنی جو ہیں وہ ہیں قرآن کے، کہ ہم نے آپ کی طرف جو ہے وہ قرآن کو بھیجا اپنے حکم سے، ہماری مرضی تھی، کسی اور کو پیغمبری کے لیے چن نہیں لیا، ہے نا. اور دوسرے روح کے معنی جو ہیں یہ فرشتے کے ہیں، ہے نا. تو اس کے پھر معنی کیا ہیں؟ کہ ہم نے جو ہے وہ فرشتے کو جو وحی لے کے آپ کے پاس آتا تھا، ہم نے جو ہے وہ بھیجا. تو بعض اوقات یہودی جو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بہت چڑھتے تھے، اور اہل مکہ اس بات سے چڑھتے تھے کہ رسول اللہ ہی کو کیوں منتخب کیا گیا، ہمیں کیوں نہیں منتخب کیا گیا پیغمبری کے لیے. تو ان ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا कोई कितना ही नबुवत के लिए तैयार हो, ये हमारी मर्जी है, मिन अमरेना, हमारा हुक्म है, जिस पे चाहें रसूल को यानी फरिश्ते को भेज दें और जिस पे चाहें कुरान को नाजिल कर दें। मा कुंता तदरी, नहीं था तू जानता, मल किताबू के किताब क्या है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो पता भी नहीं था कि कुरान मजीद क्या है, वलल ईमानू, और ना ही ईमान, वलाकिन जालनाहू, लेकिन बनाया हमने इसको नूरन नूर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो खबर भी नहीं थी कि किताब अल्लाह क्या है, और ना ही ईमान का मुकम्मल तरीन दर्जा जो आपको हासिल है, आपको पता भी नहीं था, है ना। तो गोया के नबी को भी नबी बनने से पहले ईमान का और किताब का पता नहीं होता, तो आपको फिर क्या बनाया, अल्लाह ताला कहते हैं वलाकिन जालनाहू, और बनाया हमने इसको नूरन नूर। तो यहाँ पे नूर जो है वो किस मानी में इस्तेमाल हुआ है, कि अल्लाह ताला ने जो है फिर इसको जो है वो नूर बना दिया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो पैगंबर बनाया, और आपको जो आपकी तरफ जो किताब नाजिल की, और आपको ईमान की जो दौलत है इससे बहरामंद किया, तो मानी क्या है कि आप लोगों के लिए चलता फिरता मनारा नूर बन गए। इसका ये नहीं मतलब कि बशर नहीं रहे और नूर बन गए, ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो फरिश्ता नाजिल होता था आपके दिल पर, तो फरिश्ता जब आता था तो करता क्या था, आपको कुरान की जो वही थी वो आपको देता था, और उस वही से आपका सीना जगमगा उठा और आप लोगों के दरमियान एक नूर का मीनारा बन गए। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि गोया के चलती फिरती लोगों के लिए हदायत की रोशनी बन गए। तो यहां मुराद क्या है, हदायत की रोशनी। वलकिन जालनाहू, बनाया हमने इसको नूरन, नहदी बही, हम हदायत देते हैं इसकी, मन नशाओ, जिसको हम चाहते हैं, मिन इबादिना, अपने बंदों में से। तो हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं रिसालत के लिए मुंतखब कर लेते हैं। अहले मक्का लाख शोर करते रहे, वइन्नका लतहदी इला सिराति मुस्तकीम, और बेशक तुम हदायत देते हो तरफ रास्ते सीधे के। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जा रहा है कि ये कुरान और वही के तरफ जो आप लोगों को हदायत दे रहे हैं, तो अब अल्लाह ताला जो है इसको बयान कर रहे हैं, वइन्नका लतहदी, और अलबत्ता तुम हदायत देने वाले हो, तुम हदायत देते हो, इला सिराति मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि खुद ब खुद नबी नहीं बन गए, आपको नबी बनाया गया, और उसके बाद आप जो थे वो लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ हदायत देने वाले बन गए। सिरात अल्लाह, अल्लाह का रास्ता, इस्लाम का रास्ता, दीन का रास्ता। और ये किस अल्लाह का रास्ता है, अल्लज़ी लहू मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द, वो जो उसी के लिए है जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। तो आसमान और जमीन का जर्रा जर्रा तो अल्लाह की अतात करे और उसके लिए झुक जाए, और फिर मैं और आप जो हैं वो अतात क्यों ना इख्तियार करें। तो अगर अपनी आखिरत मतलूब है, अगर अपनी आकिबत मतलूब है, अगर आकिबत की फलाह मतलूब है, तो फिर हमें पैगंबर की रहनुमाई में जिंदगी का सफर तय करना चाहिए, फिर हमें जो है वो रसूल का इत्तबा करना चाहिए और अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए, जैसे कि आसमान और जमीन अल्लाह की बंदगी करते हैं, और जो कुछ आसमान और जमीन में है, सूरज चांद सितारे, सब अल्लाह की बंदगी करते हैं, सब अल्लाह की अतात करते हैं। अल्लाह सुनो, देखो, इल्लाही तसीरुल उमूर, अल्लाह की तरफ रजू होंगे तमाम काम। तो तसीरु सारा, यसीरु बदल जाना हालत का, और इसी तरह जो है मसीर मिसर होता है, वो जगह जहां ठहर कर जाकर आप जो है वो पनाह ले लेना, रुक जाए। शहर मुल्क को क्यों कहते हैं कि आपका जो घर या जगह होती है ना, आप कहीं से घूम फिर लें फिर वहीं पर जाते हैं। तो उमूर अमर की जमा है। अल्लाह ताला याद दहानी करा रहे हैं, बता रहे हैं, चाहे कुफर करो, चाहे शिर्क करो, चाहे अतात करो, चाहे नाफरमानी करो, चाहे नबी पर ईमान लाओ, चाहे नबी का इनकार करो, तो लोगों याद रखना, कुछ भी कर लो, पक्के मोमिन बनो या पक्के काफिर, फिर जाओगे कहां, अला इल्लाही तसीरुल उमूर। यहाँ पे लोगों को तंबीह की जा रही है, कान खोल कर सुन लो, सब कुछ अल्लाह का है, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का है, तो तुम्हारे अमल भी अल्लाह की तरफ लौटेंगे। तो फिर करो क्या, आखिरत की जवाबदेही के लिए तैयार हो जाओ, आखिरत की तैयारी करो। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे, हम सबसे राजी हो जाए और हमें जो है वो अपना पसंदीदा बंदा जो है वो बना ले। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सुभानक अल्लाहुम्मा वा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।